ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंध पहला अध्याय और श्लोक संख्या है 24। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हिंसा तदभिमानेन दंड पारुष्य योर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिवा। हिंसा तदभिमानेन दंड पारुष्य योर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिवा। हिंसा तदभिमानेन दंड पारुष्य योर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हिंसा कष्ट तथा इसका अभिमानेन मिथ्या धारणा दंड पारुष्ययो दंड तथा अपमान की यथा जिस तरह वैषम्यम भ्रांति इह यहाँ इस शरीर में भूताना जीवों का मम अहम मेरा और मैं इति इस प्रकार पार्थिव हे पृथ्वी के स्वामी। कृपया अनुवाद दोहराइए। हे राजन देहापबुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबद्ध हर वस्तु को अपनी मानता है। चूंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है अतएव प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य कृपया ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा तात्पर्य है। जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभावों का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु तथा दूसरे को मित्र मान बैठता है और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि के परिणाम हैं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। अभी जो ये प्रसंग चल रहा है, जो कुछ नए आने वाले डिवोटीज हैं उनके लिए, कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो नारद जी से प्रश्न पूछते हैं कि जब उन्होंने देखा कि भगवान ने जब चक्र से शिशुपाल का के गर्दन को काटा तो उसमें से एक तेज निकला और वो भगवान के शरीर में चला गया, तो ये देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये शिशुपाल जो है भगवान से बहुत अधिक द्वेष करता था और जन्म से लेकर अब तक उसने हमेशा भगवान को से द्वेष किया और भगवान को गालियाँ दी। तो ये कैसे संभव है कि ऐसे व्यक्ति का जो शरीर जो ऐसा जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा का जो तेज है वो शरीर से निकल के सीधे भगवान के अंदर प्रवेश कर गया। ये बात उनको बड़ी अटपटी सी लगी, तो उन्होंने उसी सभा में उपस्थित जो नारद मुनि थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सारा जीवन भगवान को गाली देता रहा और भगवान की निंदा करता रहा, तो उसका जो वो जो व्यक्ति है वो भगवान के शरीर में कैसे चला गया। तो उसके उत्तर में जो है, उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो है, इससे पहले का जो प्रश्न है वो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं, तो उसके उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, उसके बाद जो है उन्होंने इस प्रसंग को के वहाँ उन्होंने जो है रेफरेंस दे दिया कि कैसे हुआ था सुनो। तो अब ये प्रसंग चल रहा है, तो अब नारद मुनि जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का। तो आज का जो श्लोक है उसमें ये है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति में जो द्वंद्व होता है, या व्यक्ति में जो द्वंद्वों की सृष्टि होती है, या भौतिक जगत में जो द्वंद्वों की सृष्टि है, वो सब जो है मटेरियल यानी भौतिक प्रकृति का परिणाम है, या व्यक्ति के अंदर जो द्वंद्व होता है, या व्यक्ति के अंदर जो वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ये मेरा है ये दूसरे का है, मान अपमान, स्नेह द्वेष, हानि लाभ, यश अपयश, ये सब जो भाव हैं ये वस्तुतः माया की उपज हैं। और जब जीवात्मा में ये चीज़ आता है इसका मतलब है कि वो देहात्म बुद्धि में है। तो ये जो है सब टोटल वो पूरी बात बता रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के वजह से देहात जो है वो जीवात्मा ऐसा मानता है कि ये मेरा है ये दूसरे का है। तो प्रभुपाद जी हालांकि भगवद्गीता में आई थिंक कि सैकड़ों बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है देहात्म बुद्धि का। अगर आप सब भगवद्गीता पढ़ते होंगे मुझे लगा हर दूसरे तीसरे पेज में प्रभुपाद जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं, देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि है क्या, क्या होता है देहात्म बुद्धि? आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, अर्थात आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते। जैसे कि बौद्ध फिलॉसफी में है, जो बौद्ध दर्शन है, और तीन नास्तिक दर्शन है भारत में और छह आस्तिक दर्शन है। जो तीन नास्तिक दर्शन हैं उसमें से उनकी जो फिलॉसफी है, नास्तिक दर्शन का क्या मतलब होता है थोड़ा इसको समझ लीजिए। नास्तिक दर्शन का ये मतलब नहीं होता कि वो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक दर्शन का ये मतलब होता है कि वो वेदों को नहीं मानते। जो ब्राह्मणों ने जो और जो पहले के जो आचार्य और ऋषियों ने जो नास्तिक दर्शन की जो परिकल्पना की थी, क्योंकि जो आस्तिक दर्शन है कई जैसे वैशेषिक है मीमांसक हैं, ये लोग भी भगवान को नहीं मानते, परंतु ये सब आस्तिक दर्शन में आते हैं, लेकिन ये लोग वेद को मानते हैं, इसीलिए सब आस्तिक दर्शन के अंदर है। और जो दूसरे वाले हैं जैसे चार्वाक है, जैनिज्म है और बौद्धिज्म है, ये तीनों भी हमारे यहाँ भारत में ही हैं। तो इन तीनों में क्या है कि ये लोग जो हैं वेद को नहीं मानते, और बौद्ध तो आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता, और चार्वाक भी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, परंतु बौद्ध पुनर्जन्म को मानता है। देखिए बड़ी विचित्र सी बात है कि अगर आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता तो पुनर्जन्म कैसे होगा, परंतु वो उनकी जो फिलॉसफी है कि वो बौद्ध आत्मा को तो नहीं मानते परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो ये जो उसमें है, और चार्वाक का फिलॉसफी क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं भूतः, जब तक जियो सुख से जियो, अगर चोरी करके ऋण लेके भी खाना पड़े तो खाओ, क्योंकि शरीर के मरने के बाद कुछ नहीं है। तो देहात बुद्धि एक्चुअल में इसी को बोलते हैं कि जब तक ये देह है तब तक सब कुछ है, जैसे ही देह खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। आजकल जो ज़्यादातर जो ये इसी दर्शन को मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में भी इसी दर्शन को लोग ज़्यादातर मानते हैं, भगवान को किसने देखा है, कल किसने देखा है, आपने देखा भगवान को, अब इस तरह की जो है फिलॉसफी करते हैं। तो बहुत सिंपल है वैसे ऐसी फिलॉसफियों को काटना और समझना, और आप सब जो रेगुलर आते हैं उनको मालूम भी है कि एक व्यक्ति एक ही दिन में एक ही समय में एक शहर में जन्म लेता है तो दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। आप पंडित से जाके पूछो या उस ज्योतिषी से जाके पूछो कि दोनों का भाग्य कैसे अलग अलग हो गया। एक ही शहर में पैदा हुआ, एक ही मुहूर्त में पैदा हुआ, एक ही नक्षत्र में पैदा हुआ, एक ही जगह पर पैदा हुआ, एक करोड़पति है और एक भिखमंगा बन गया। क्या उसके लिए मुहूर्त लागू नहीं था, उसके लिए समय लागू नहीं था, उसके लिए काल लागू नहीं था? था, तो कैसे हो गया फिर? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। श्री राधा राधिकार भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस फिलॉसफी को काटना इतना बहुत ईजी है, मतलब हर व्यक्ति इसको समझ भी सकता है और इस फिलॉसफी को काट भी सकता है कि निश्चित रूप से इसका मतलब पीछे के कर्म है जो व्यक्ति का पीछा करता है। वेद कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुहासवम, कि हर व्यक्ति को जो है निश्चित रूप से उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ फल भी, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्मों को भी भोगना पड़ेगा। तभी भक्तों के समाज में आने पर, या हम भक्ति जब शुरू करते हैं तो भक्त लोग बताते हैं कि आप पुण्य वर्ग से भी अलग रखिए अपने आप को और पाप वर्ग से तो निश्चित रूप से अलग रहिए। इसलिए ही बताते हैं क्योंकि अगर आप पुण्य कर्म भी करेंगे तो पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, वो भी पुण्य कर्म को भोगने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म जो है अपने आप छीन हो जाएगा। और पहले के समय में कुछ इस तरह की होती भी थी, एक कर्मनाशा नदी हुआ करता था पहले, पता नहीं अब है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कर्मनाशा नदी जो है वो वाराणसी के आसपास बहती थी, तो कर्मनाशा नदी का मतलब ये था कि उसमें सारे कर्म का नाश हो जाता था, आपने जो भी कर्म किए हैं उसका नाश हो जाएगा। तो अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, बट है, अभी कह रहे प्रभु जी कि है, बिहार में है वो, तो अभी भी वो कर्मनाशा नदी है कि मतलब वो कर्म का नाश हो जाता था उसमें। और अभी तो इस तरह से जो है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जो नदियों का प्रभाव है वो कलयुग के प्रवेश करने के 5000 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। जो धार्मिक शास्त्र हैं और जो मनुस्मृति है और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उनमें इन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो, इसीलिए हम जैसे गंगा में स्नान, यमुना में स्नान जो पहले लोग करते थे, तो 5000 वर्ष कलयुग को जैसे ही पूरा हो जाता है उनका सारा प्रभाव खत्म हो जाता है, उन नदियों का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब वो नदियाँ जो कुछ करती थीं अपने उससे, वो सब उनका सारा प्रभाव सीज हो जाता है। 2500 वर्ष कलयुग के प्रवेश करने के बाद जो है वो ग्राम देवता हुआ करते थे पहले, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो और इस तरह से जो है वो जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कलयुग के और इसलिए कहा गया है कि 10000 जो वर्ष बीतेगा उसके बाद ये सब कुछ जो है वो सब कुछ कुछ भी नहीं रहेगा, इतना घोर कलयुग आ जाएगा। तो ये जो है वो देहात बुद्धि की जो है, देहात का मतलब देह को अपना मानना, देह को ही सब कुछ मानना। तो जितने भी फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी, बौद्ध फिलॉसफी और चार्वाक फिलॉसफी जो मैंने बताया आपको, ये सब देह को ही सब कुछ मानते हैं। इनके हिसाब से जो देह है और इनकी जो फिलॉसफी है, जैसे कि जैसे कोई एक हमने किस खेत में किसी को बीज को डाला तो बीज जब नष्ट हो जाएगा तब उसमें से कोई दूसरा पौधा निकलता है। वो ये मानते हैं, उनकी ये फिलॉसफी है कि जब वो बीज नष्ट होता है तब वो दूसरे पौधों को जन्म देता है। तो जब ये जीवात्मा खत्म होगा तो वो दूसरे एक पौधे को जन्म दे देगा, उनका ये मतलब होता है कि वो इस तरह की फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं। और उनका ये बीज वाली फिलॉसफी को वो ज़्यादातर मस्टर्ड बीज को, जैसे मस्टर्ड बीज को हमने खेत में डाला, वो जो बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक उसमें से पौधा जो है उत्पन्न नहीं होगा, वो नष्ट होते ही उसमें से पौधा उत्पन्न हो जाता है। परंतु जो वैष्णव फिलॉसफी है और जो वेदांत फिलॉसफी है और जो कई आस्तिक फिलॉसफियों में खास करके ये योग दर्शन फिलॉसफी है, वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते। वो लोग जो हैं वो प्रकृति को भगवान से अलग मानते हैं, प्रकृति को और जीव को भगवान से सर्वथा पृथक बताया गया है कि ये दोनों चीज़ जो हैं हमेशा अलग हैं भगवान से, इनकी भगवान के साथ सत्ता जो है वो कभी नहीं रही है। तो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी जो है इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो इसमें जो है कि तो इसमें कहा जाता है कि जो इसकी जो देह बुद्धि का कारण क्या है, फिर देहात बुद्धि के क्या कारण होते हैं, क्यों हम देहात के इतना होते हैं, अज्ञानता की वजह से। और अज्ञानता किसके प्रति, किस चीज की अज्ञानता? पढ़े लिखे लोग हैं सब, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या होल्डर किया हुआ है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो अज्ञानता तो नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अज्ञान है। तो फिर अज्ञानता किस चीज की है? हाँ, भौतिक जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों का आपस में क्या संबंध है, तीनों की क्या स्थिति है? इस ज्ञान से वंचित होने की वजह से जो है व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का ज्ञान नहीं है, तो उसकी वजह से वो देहात्म बुद्धि में रहता है। और फेथलेसनेस, उसके अंदर जो है वो विश्वास की कमी होती है कि सचमुच ऐसा होता है, सचमुच कोई एग्जिस्ट करता है, सचमुच भगवान है, इस तरह की वजह से जो है वो इस धारणा को पाल लेता है कि जब तक शरीर है तब तक सब कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं है। और इसी दर्शन में, इसी फिलॉसफी में वो जो है सारा जीवन जीता है। तो और खास करके जो लोग, मान लीजिए जिनके पास कुछ नहीं है, वो दोनों की स्थिति ऐसी है, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी इस फिलॉसफी को नहीं मानता, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो भी इस चीज को नहीं मानता, उसको लगता है कोई भगवान भगवान नहीं है, नहीं तो इतनी क्या बोलते हैं, इतना भेद नहीं होता समाज में कि हम भूखे मर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो इसलिए नहीं मानता। जो अमीर है उसको अहंकार की वजह से नहीं मानता, कोई भगवान भगवान नहीं होता, मैंने अपने मेहनत से सब खड़े किए हैं, तो इसकी वजह से नहीं मानता। तो दोनों की स्थिति जो है वो ऐसी होती है। जो बीच का क्लास होता है ना, बीच का बुर्जुआ क्लास, बुर्जुआ मतलब मीडियम, मीडियम वर्गीय जो लोग होते हैं, मध्यवर्गीय लोग, ये मध्यवर्गीय लोग जो हैं वो पहले नहीं होते थे, ये सब आधुनिक सभ्यता का, और आप समझ लीजिए अभी की जो आर्थिक स्थिति है उसकी उपज है ये मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग पहले नहीं होता था, ये मध्यम वर्ग का शब्द भी फ्रांस से आया है, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके बाद उसमें से एक ऐसा वर्ग निकला था जो अमीर था ना गरीब था, तो उसने उसको मीडियम क्लास का दर्जा दिया, तो उसके बाद से ये कंसेप्ट जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया मीडियम क्लास, उसको लोग बुर्जुआ बोलते थे, बुर्जुआ मीडियम क्लास के लोग। तो ये मीडियम क्लास का जो लोग है ना, जो अमीर है ज़्यादा और ना बिल्कुल ही गरीब है, वही भक्ति भी करता है, वही समाज में क्रांति भी करता है, ये जब आप जब भी देखोगे ये चीज़ यहीं से ऊपर नीचे ग्राफ होती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो मीडियम लेवल व्यक्ति है, इसकी स्थिति बड़ी खराब सी रहती है, उसको ऊपर जाने की ललक होती है और नीचे गिरने का खतरा रहता है, वो नीचे गिरना नहीं चाहता क्योंकि वो देखता है नीचे की स्थिति बहुत खराब है, ऊपर बढ़ना चाहता है तो ऊपर बढ़ नहीं पाता। आप कहोगे मैंने ये चर्चा क्यों की, तो मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो बाहर के जो लोग हैं वो पूर्णतया भौतिकवादी होते हैं, पूर्णतया देहात्म चेतना में होते हैं, उनकी तो हम बात ही ना करें, क्योंकि तो सारा जीवन जो है अपने लिए और अपनों के लिए जीते हैं, वो जीवन का कंसेप्ट यही है, अपने लिए और अपनों के लिए। फिर जो बहुत हाई लेवल के डिवोटी हैं, सन्यासी हैं, वो मुक्त हैं इन चीज़ों से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम लोग हैं बीच के, जो भक्त लोग जो भक्ति में आए हुए हैं और तब भी मेटेरियल कंसेप्ट बनाए हुए हैं, देहात बुद्धि में होते हैं हम भी, बहुत खतरनाक स्थिति है। हमें ज्ञान तो है, ये देहात बुद्धि है, नीचे जो है नीचे फिसलने का खतरा भी है, और ऊपर बढ़ना भी चाहते हैं, बड़ा रसाकसी चल रहा होता है, कभी नीचे की चीज़ हमें आकर्षित करती हैं, कभी ऊपर की चीज़ आकर्षित करती है, वो बहुत शुद्ध भक्ति कभी आकर्षित करती है, सन्यास धर्म आकर्षित करता है, ये सब चीज़ें भगवान का प्रेम ये सब कुछ आकर्षित करता है, आध्यात्मिक जगत, जब भी हम सुनते हैं किसी साधु को, बहुत बड़े हाई लेवल के डिवोटी को, तो वो चीज़ें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, फिर हमें मन में आता है अब भी मैं शुद्ध भक्ति करूँगी, मैं भी शुद्ध भक्त बनूँगा, कुछ भी हो जाए मैंने भी शुद्ध भक्त बनना है। फिर देखते हैं मुश्किल तो समस्या यह है कि देखो यहाँ भी भेदभाव हो रहा है, मंदिर में यहाँ भी भेदभाव करते हैं, यहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं, फिर वो हम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, फिर हमें लगता है ये कहाँ फंस गए हम। अब समझ लो जो ये क्लास है यहाँ भी, इसलिए मैं बता रहा था कि मीडियम क्लास, तो हम लोग भी यहाँ जो हैं वो मीडियम क्लास में जो हैं, कभी नीचे की तरफ भागते हैं, कभी ऊपर की तरफ जो है आकर्षण होता है, दोनों ही तरह जो है, हम ऐसा नहीं कि ऊपर की चीज़ें आकर्षित नहीं करती, करती हैं, परंतु नीचे की चीज़ें भी आकर्षित करती हैं, अभी नीचे की चीज़ों को हमने छोड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि जो भक्ति है बड़े आराम से सहूलियत से हो जाए, कोई कष्ट ना उठाना पड़े, घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, एयर कंडीशन में भी कोई कमी ना आए, सब कुछ एयर कंडीशन चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, सोने में भी कोई हस्बैंड से चाहते हैं या पर जो भी कोई वर्किंग होता है कि अच्छा कमा के लाए और भक्ति भी करे, और ये चाहते हैं अच्छा भक्ति भी करे, तो अच्छा कमाएगा, हम एयर कंडीशन मेंटेन करेंगे, अच्छी भक्ति भी करेगा, तो बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति अब सच में सच है, ये बहुत मुश्किल है कि दोनों जीवन को आप एक साथ चलाओगे, और दोनों जीवन को एक साथ बहुत अच्छा चलाना तो आसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं हुआ है। अभी पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत का चरित्र चल रहा था, तो महाराज प्रियव्रत जो हैं वो देखिए कि वो बिल्कुल ही भक्त जो है भौतिक जीवन में आना ही नहीं चाहते थे किसी भी तरह से नहीं, और वो उत्तानपाद से बड़े थे, वो उत्तानपाद प्रियव्रत मनु महाराज के दो बेटे थे, तो उत्तानपाद से बड़े थे प्रियव्रत महाराज, बट प्रियव्रत महाराज ने वह जंगल चले गए, उन्होंने राज नहीं किया, उत्तानपाद ने राज किया, उत्तानपाद जो ध्रुव के पिता थे, और इस तरह उनका वंश चला, और बाद में जाके जो है वंश खत्म हो जाता है। जब वंश खत्म हो गया तो फिर मानु ने सोचा कि अब वंश चलेगा कैसे, तो प्रियव्रत महाराज को बुलाया, बड़ी मुश्किल से माने वो, ब्रह्मा जी जब आए उनके पास तब वो माने, ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने जो है वो इस भौतिक जीवन को स्वीकार किया, और जब भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया तो इसमें इतने ज़्यादा वो आसक्त हो गए बाद में, बड़ी जो है वो बताया जाता है कि उनकी दो पत्नियां थी, तो वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाए तो कई बार क्या होता था कि कई कई दिनों तक वो जो है वो राजमहल से बाहर नहीं निकलते थे, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े तपस्वी भी रहे थे उससे पहले। तो आप सोचिए हम लोगों की चेतना, जब उस ऐसे व्यक्ति की चेतना जो ब्रह्मा जी के कहने पर राज करने आए थे, ऐसे व्यक्ति की चेतना पारिवारिक लाइफ में इस तरह बंध जाती है, तो हमारे और जैसे लोगों की जो है आप सोच सकते हैं कि कैसी होगी, बहुत खतरनाक है एक्चुअली में। तो ये जो तभी, क्योंकि ये भौतिक जो चेतना है, शरीर को अपना मानना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना, वो जल्दी से जाता नहीं है। बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं, बड़े अच्छी सेवा भी करते हैं, बहुत अच्छा जो है वो जप भी करते हैं, परंतु तब भी ये चेतना अंदर से जाती नहीं है। छोटी छोटी सी बात हमें डिस्टर्ब करती है, छोटी सी बात हमें डिस्टर्ब कर देती है, तो ये जो है देहात बुद्धि के वजह से होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है फॉल्स ईगो है। जब व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है तो तीनों मोड्स जो हैं प्रकृति के तीनों मोड्स वो उसको कंट्रोल करते हैं, वो स्वयं कंट्रोल नहीं करता। कौन कंट्रोल करता है उसको? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर उसके अंदर जो गुण प्रोमिनेंट होता है उस गुण के हिसाब से वो काम करता है। जैसे ही उसमें देहात बुद्धि की ये भावना विकसित होती है, रहती है और विकसित होती है कि ये मोड उसको कंट्रोल करने लगते हैं। उपनिषद में एक श्लोक आता है, द्वासु पर्णा संज्ञा सखाया, तो उसमें कहा जाता है कि जो एक जीवात्मा है, दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, एक फल को खा रहा है और एक चुपचाप बैठा देख रहा है, तो जो फल खा रहा है वो कौन है? जीवात्मा है, हम हैं। तो हम फल खा रहे हैं, जो दूसरा बैठा हुआ देख रहा है वो कौन है? परमात्मा है। वो देख रहा होता है कि ये व्यक्ति ये फल खा रहा है, तो ये जो जीवात्मा है उसके अंदर ये स्वाभाविक, जैसे ही व्यक्ति इस देह को धारण करता है, इस भौतिक प्रकृति के इस दिए हुए इस देह को धारण करता है, उसमें चार चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर जो है, वो चार चीज़ें जैसे ही देह आएगा उसको, उसके अंदर वो चार चीज़ें पनप जाएंगी। कौन कौन सी? वो भूल गलती करेगा, कमिट मिस्टेक्स, हमेशा भ्रम में रहेगा, वो चीटिंग प्रोपेंसिटी होगी उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होगी, और उसकी जो इंद्रियाँ हैं वो अपूर्ण होगी। ये चार तरह के डिफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं जैसे ही भौतिक शरीर को धारण करता है। क्या क्या है? हमेशा भ्रम में रहेगा, गलतियां करेगा, धोखा देगा, और उसकी अपूर्ण इंद्रियां होंगी। तो आप समझ लीजिए कि ये चार चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट हो गया, मतलब जैसे आपने शरीर दिया ये आपके अंदर आ गया, तो व्यक्ति इसके हिसाब से काम करेगा। फिर मान लीजिए अपूर्ण इंद्रियां कैसे है, मैं ये सामने देख रहा हूं, मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूं, तो अपूर्ण इंद्रियां कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, इल्यूजन में होते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान होने के बावजूद हम सब कुछ जानते हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, तब भी हम उससे अलग होकर एक क्षण भी नहीं सोचते। जरा सोचने का प्रयास करिए कि हम लोग सच में किसके क्रिएशन हैं और किस तरह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, तो आप 40 साल पहले कहाँ थे? आपके पास उत्तर नहीं है इसका। और 40 साल बाद कहां जाएंगे इसका भी उत्तर नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि दिनानि एव तत्र का परिवेदना। भगवान कह रहे हैं कि तुम जन्म से पहले भी अव्यक्त थे, तुम मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाओगे, अर्थात आप बीच में हैं उस समय के लिए। 8 से 9 भागवतम क्लास, 8 से पहले भी नहीं था, 9 बजे के बाद भी नहीं होगा, बीच में है। तो जीवात्मा की स्थिति देखिए कैसी है, वो कुछ समय के लिए शरीर में है, तब भी शरीर से मोह खत्म नहीं होता उसका। भगवान की सृष्टि कितनी पावरफुल है, जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी थी तो सबसे पहले किसको उत्पन्न किया, 4 कुमारों को। और 4 कुमारों ने क्या कहा, हम सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो जंगल जा रहे हैं। और राजीव सा हो गया, फिर दूसरों को उत्पन्न किया। तो फिर नारद जी आए, नारद जी ने कहा जब हमारे भाई, जो मेरे भाई चले गए तपस्या करने तो मैं भी जा रहा हूं तपस्या करने। तो हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द कहे ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया नारद जी को, और नारद जी ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। तो इसकी नारद जी के श्राप की वजह से ब्रह्मा की पूजा कहीं संसार में नहीं होती है, ये नारद जी ने श्राप दिया हुआ है कि आपका मंदिर कहीं नहीं होगा, पूरे 3 कल्प तक का श्राप दिया हुआ है, 3 कल्पों में ना आपका मंदिर होगा ना कोई आपकी पूजा करेगा। और उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम्हें जो है तुम बहुत ब्रह्मचारी बनते हो, तुम्हें हमेशा स्त्रियों के बीच में रहोगे, तुम स्त्रियों से घिर कर रहोगे, स्त्रियों के बिना तुम जीवित नहीं रहोगे, स्त्रियां ही तुम्हारी प्राण होंगी, इस तरह से बहुत श्राप दिए उनको। और नारद जी जो है वो उपबरहन बन के वो गंधर्वों के बीच जाकर पैदा हो गए। ऑल टुगेदर एक अलग कहानी है। तो कहने का मतलब कि जो ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा जी ने जो जिस सृष्टि की है उस सृष्टि में उन्होंने जो है ये काम को सबसे पहले डाला था। तो जो व्यक्ति, उन्होंने ऐसा सृष्टि कर दी कि व्यक्ति जो है अपने आप ये सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। जब ब्रह्मा जी इस तरह से सृष्टि कर रहे थे तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, तो भगवान ने उनको आकाशवाणी दी भी इससे काम चलेगा नहीं, तुम कुछ इस तरह की सृष्टि करो कि सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती चली जाए। तो ब्रह्मा जी ने जो है ये काम की परिकल्पना की और इन्होंने जो है इस काम को उत्पन्न किया, और उसके बाद जो है उन्होंने शरीर में आरोपित कर दिया, पुरुष के शरीर में, फिर उन्होंने एक स्त्री का शरीर बनाया उसके अंदर भी आरोपित कर दिया, और फिर उन्होंने मनु को बनाया और शत्रुपा को बनाया। ये पहला जो व्यक्ति उन्होंने कपल पैदा किए, मनु को और शत्रुपा को, और उन्हीं के अंदर उन्होंने ये काम को आरोपित कर दिया दोनों के अंदर, और कहा कि अब चिंता करने की बात नहीं है, ये सृष्टि अपने आप चलती रहेगी। तो आप देखिए कि मनु महाराज के 2 बेटे हुए और 9 बेटियां हुई, जो कि हम सब पढ़ते हैं इसमें कि 9 ग्लोरियस बेटियां थी उनकी, इतने बड़े उसके बाद उनकी शादियां जो है अलग अलग प्रजापतियों से होती है और इस तरह से पूरी सृष्टि फैल जाती है। तो भगवान ने इस तरह का चीजें उत्पन्न कर दी कि देहात बुद्धि से बाहर कोई देखता ही नहीं आप अपने आप को। आप सोचो कि हम वो भगवान कितने पावर, हम सब का जो जन्म है स्पर्म वीर की एक बूंद से होता है। हम इतने बड़े व्यक्ति अपने आप को इतने बड़े अहंकारी बनते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं, हमारा जन्म किस चीज से हुआ है? आप समझिए कि हमारा जन्म किस तरह से हुआ है। आरुणी, जो आरुणी का पुत्र था श्वेत केतु, महर्षि आरुणी का एक पुत्र था श्वेत केतु, तो श्वेत केतु जब एक बार वो शिक्षा लेके आए तो बहुत अहंकार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इस तरह से सोचने लगे। तो आरुणी ने जो है उनको बुलाया अपने पास, कहा आप जब से शिक्षा लेके आए हो मैंने देखा कि आप अपने आप को जो है बहुत बड़ा अहंकारी समझते हो, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया तुमने? तो अब पिता के सामने व्यक्ति कैसे बोला, कहीं नहीं मैं ऐसा नहीं समझता हूं, क्या आप समझते हो? फिर उन्होंने एक बड़ का पेड़ था उसमें से बोला एक फल तोड़ के लाओ, तोड़ के ले आए, बोला इसको खोलो, खोल दिया, कहा इसमें कुछ दिखता है? कहता नहीं। कह इसको दोबारा तोड़ो, देखा इसमें कुछ दिखता है? कहता नहीं, देखो है ये जो अणु हैं, उन्होंने अंदर दिखाया कि अणु हैं, इसी अणु से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस छोटे से, उन्होंने कहा इस छोटे से बीज के अंदर जो है इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ के हम नीचे बैठे हैं ये इसी की सृष्टि है। तो हम जब सब जो जीवात्मा जो भगवान को चैलेंज करते हैं और देहात बुद्धि में रहकर भगवान को पूछते नहीं, हम उसी वीर की एक बूंद की पैदाइश हैं, सृष्टि हैं, जो है हम भगवान को मानने का प्रयास नहीं करते। या हम विभिन्न तरह से आर्गुमेंट करते हैं कि आप ये समझाओ भगवान है कि नहीं है। तो क्योंकि हम हमारे अंदर ऐसी चेतना घुसी हुई है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो और ये देहात्म चेतना की जो सबसे प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा व्यक्ति जो है वो या तो लेमेंट करेगा या तो शोक करता है या खुश होता है। कुछ उसके अपने हिसाब की चीज़ हो जाएगी तो खुश हो जाएगा, कुछ उसके मतलब की चीज़ नहीं हुई तो उदास हो जाता है। तो नारद जी यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को उसमें युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ये जो द्वंद की सृष्टि है ये इस भौतिक जगत की उपज है। भगवान ने शिशुपाल का जो द्वेष था वो भौतिक था और किसी भक्त की जो प्रार्थना होती है वो भी भौतिक होती है, परंतु भगवान दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता, ना किस भक्त के स्तुति से फर्क पड़ता है, तब भी वो भक्त की स्तुति को एक्सेप्ट करके उसको आदान प्रदान करते हैं, ना उसकी निंदा से उनको कोई फर्क पड़ता है, परंतु फिर भी उसके निंदा को एक्सेप्ट करके भगवान उसको दंड देते हैं। और ये दोनों ही स्थितियां जो है भगवान उन पर कृपा करने के लिए करते हैं। मतलब उनका दंड अगर वो देते हैं तो भी वो कृपा है, अगर वो जो है किसी व्यक्ति को अवार्ड देते हैं यानी उसका इनाम देते हैं तो भी ये उनकी कृपा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान इन द्वंद्वात्मक जगत से बिल्कुल परे हैं। उनको न निंदा से फर्क पड़ता है न स्तुति से फर्क पड़ता है, परंतु दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में इस भौतिक जगत में हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं, तो वो फिर दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए ये आवश्यक है। और यही बात जो है वो उनको बता रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, हमारे जीवन में जो तकलीफ है, हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये सब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। कृपा करके समझने का प्रयास करिए, इससे अपने फ्यूचर को खराब मत करिए। उस सफरिंग को चुपचाप अगर हम सह लेंगे तो हमारा जो अगला जीवन होगा बहुत सुंदर होगा, हमारा जो अगला जीवन होगा बहुत सुंदर होगा। पर अगर आपने उस सफरिंग को सहने का प्रयास नहीं किया तो आप अपने अगले जीवन को भी खराब कर लोगे। देखिए मुझे ये मेरे मान लीजिए मेरे कर्मों में ये है कि मुझे रोटी नहीं मिलेगी घर में, तो मुझे किसी दूसरे तरह से चोरी करके या किसी भी तरह से करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए ऐसा कर भी लिया तो क्या होगा, एक तो आपने इस कर्म का फल नहीं भोगा, तो ये कर्म तो अधूरा रह गया कर्म फल भोगना, आपने एक नए कर्म को जनरेट कर दिया तो उसका फल अलग से मिलेगा, तो यानी डबल कर्म में आप फिर पड़ गए, फिर ये डबल जो है आगे और चार में निकल जाएगा। इस तरह से जो जीवात्मा है वो कभी संसार से निकल नहीं पाता। इसलिए जो भी सफरिंग आती है हमारे जीवन में, आप प्रयास करिए फेयर तरीके से, निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए प्रयास ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारी चीज़ छीन रहा तो हम उसको दे दें, ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने पूरी ताकत से, पूरे इंटेलिजेंस से, फेयर तरीके से करने का प्रयास करिए, उचित तरीके से। परंतु इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से मान लीजिए ये मेरे कर्म हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है और भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बहुत अच्छी जगह पर दिखा लिया, बहुत अच्छे इलाज करवा लिया, तब भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरे कर्म है और मेरे कर्मों का परिणाम है ये बीमारी, किसी वजह से नहीं है, किसी गलत जो है आचरण की वजह से नहीं है, ये मेरे कर्म का परिणाम है, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि अब जैसे कोई भी व्यक्ति जो हम भौतिक चेतना में, जो भक्त भी भौतिक चेतना में होता है, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है। इसके परिणाम क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले वो भयभीत रहता है, अपने पोजीशन को लेकर भयभीत रहता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मान लीजिए मंदिर में भी है, वो सबसे सुरक्षित स्थल पर है, वर्ल्ड के इस तीनों लोग के सबसे सुरक्षित स्थान पर रह रहा है, सबसे सुरक्षित हाथों में है, तब भी डरा हुआ है। जबकि भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है कि वो भयभीत निर्भय होता है व्यक्ति, अगर वो ठीक भक्ति कर रहा है तो निर्भय हो जाएगा, परंतु अगर वो भयभीत है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब वो देहात्म चेतना में है, एकदम से समझ जाना चाहिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझ ले व्यक्ति देहात में चेतना में, वो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होता है, छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उसको, तो इसका मतलब है वो देहात में चेतना में। और अगर वो शोक करता है तो शोक करना प्रभुपाद जी लिखते हैं शूद्रों का काम है। जो शोक करना का मतलब शूद्र का काम है। शोक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपके शोक करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, आपके दुखी होने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। दुखी जो है समस्या का समाधान होगा आपके लड़ने से, आपके आगे बढ़ने से, आपको उसके लिए जरूरी कदम उठाने से। आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप इमीडिएट स्टेप्स उठाइए उसको ठीक करने के लिए। ये तरीके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं, अब जो होगा देखेंगे, ये तरीका नहीं है। सिद्धांत को ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक। इसीलिए कहा जाता है ये भागवतम को, भगवद गीता को के जो सिद्धांत हैं उसको भक्तों के साथ समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आपको सिद्धांत विरोधाभास दिखाई देते हैं। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को कटते हुए दिखाई देते हैं कि एक ये सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काट रहा है, परंतु हमें ठीक से समझने की जरूरत है। कोई सिद्धांत किसी को नहीं काट रहा है, तो ये समझने की जरूरत है। फिर तीसरा लक्षण क्या होता है जब देहात बुद्धि होती व्यक्ति को, एनवीएस होता है, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा वह द्वेष होता है, वो द्वेषी होगा। उसको लगा ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति ठीक। मंदिर में भी है, अगर मान लीजिए उसको लगता है ये चार लोग मेरे अच्छे हैं और ये दो लोग थोड़े ठीक नहीं है, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब कि अगेन जो है वो व्यक्ति देहात चेतना में। वो दो लोग भी उसके लिए तो कोई दो लोग भी नहीं, चार लोग भी नहीं, सब बराबर है। क्या मित्रता और क्या शत्रुता, उसके लिए तो सब एक जैसे हैं। तो जो देहात चेतना से जो ऊपर उठा हुआ है तो वो व्यक्ति के अंदर ये भाव होगा कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। परंतु जो व्यक्ति देहात चेतना में है उसको सेट कर लेता है कि ये व्यक्ति, ये भक्त मेरे ठीक हैं, ये भक्त मेरे फेवरेबल हैं, ये भक्त मेरे फेवरेबल नहीं है। दास को कैसा खतरा, हमारे नाम लोगों के नाम के पीछे दास लगता है, दास को क्या खतरा होगा बताइए? दास को भी खतरा होता है कोई? दास को खतरा नहीं होता, जो स्वामी बनना चाहता है उसको खतरा होता है। जो स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, दास के बेस में भी स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, उसको खतरा है, इसीलिए उसको पोजीशन से खतरा लगता है। मेरे को ये बोल देगा प्रभु जी, ऐसा बोल देंगे, वो ऐसा बोल देगा, इस तरह स्थिति हो जाएगी। तो ये जो डर है, ये जो भय है, वो देहात बुद्धि की वजह से है, क्योंकि हम देहात चेतना में हैं इसलिए हमें डर लगता है। हमारी चेतना अगर विकसित होगी या हम उच्च कॉन्शियस में अगर हम होंगे तो हमें डर ही नहीं लगेगा। जिसको सेवा करनी है वो सड़क पे जाके भी करेगा, जिसको सेवा करनी है आप जिस मंदिर में फेंक दो, जिस जगह पर फेंक दो, जिस जगह पर फेंक दो, वो सेवा करेगा। जब हस्तिनापुर का बंटवारा हो रहा था तो भीम और अर्जुन ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम वो खांडवप्रस्थ नहीं लेंगे। युधिष्ठिर तो मान गए, तो जो भीम और अर्जुन है वो अड़ गए, हम खांडवप्रस्थ नहीं लेते। तो खांडवप्रस्थ क्यों लेंगे, सारा जंगल है, बेकार है, थरकला, मतलब बहुत ज्यादा। तो भगवान प्रकट हो गए उस समय, भगवान ने कहा क्या झगड़ा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे बंटवारा हुआ है और ये हमें खांडवप्रस्थ मिला है, तो भीम और युधिष्ठिर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? तो कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं वहां कुछ नहीं है। तो कहा नहीं है तो क्या है, हम बना लेंगे। कहा हम बना लेंगे, क्या तुम डरते हो कि उसको हम अपने लिए रहने योग्य बनाने से? तभी उसका नाम खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है इंद्र की राजधानी, प्रस्थ का मतलब निवास, इंद्र जैसी राजधानी बना दी उसको, अमरावती जैसे। खांडवप्रस्थ था, खांडव का मतलब होता है वन, वन वन प्रदेश था वो, तो खांडव प्रदेश को उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम कन्वर्ट कर दिया, भगवान ने नाम चेंज कर दिया, कहा खांडवप्रस्थ नहीं है, हम इसको इंद्रप्रस्थ बना देंगे। तो भक्तों के लिए है कि हमें, मान लीजिए आपको लगता भी है कि वो भक्त आपसे सचमुच का द्वेष करता है और सचमुच का इस व्यक्ति है, तब भी कोई बात नहीं है, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। ये बात उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता जो व्यक्ति ठीक से भक्ति नहीं करता, विश्वास होगा ही नहीं उसका कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये तीसरा जो है सरेंडर का तीसरा जो फॉर्मूला है कि रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये इस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होगा जो व्यक्ति ठीक से भक्ति नहीं करता। आप यकीन मानिए, जो व्यक्ति बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहा है उसको बिल्कुल विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि देखेंगे जो भगवान को देखना होगा अपने आप देख लेंगे, पूरा विश्वास होता है उसको। परंतु जो जिस व्यक्ति की भक्ति ठीक नहीं होती वो जोर तोर करता है, फिर प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा कहा है, अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो हटा देंगे, बोलेंगे क्या है तुम भक्ति नहीं कर। कहने का मतलब है कि वो देहादि चेतना में है। अगेन, तो भक्त अगर देहादि चेतना में है तो उसके लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, वेरी डेंजरस उसमें लेवल पे है वो, क्योंकि बाहर का व्यक्ति है कोई समस्या नहीं है। इंद्र देहादि चेतना में था, पृथ्वी महाराज के घोड़े चुरा कर ले गया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। आपको पता है भगवान ने और ब्रह्मा जी ने इंद्र को नहीं डांटा, किसको डांटा? पृथ्वी महाराज को, जबकि पृथ्वी महाराज की कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी पृथ्वी महाराज की। तब भी क्या कर रहे हैं भगवान, तुमसे उम्मीद नहीं की जाती है, भक्तों से उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह का व्यवहार करेगा। इंद्र तो करेगा क्योंकि उसका पाप का लालच है, उस पोजीशन पर बैठा हुआ है, उसकी वो स्थिति है, वो करेगा ऐसे, पर तुमने ऐसा क्यों सोचा? तो भक्तों से बहुत उम्मीद की जाती है, भक्तों के लिए जो है मेटेरियल डिजायर्स, मेटेरियल देहात बुद्धि में रहना, जैसे मैंने कई बार देखा है, मैं कई भक्तों से बात करता हूं जो ये सब कुछ पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, हर भी रहे हैं। एक डिवोटी से एक दिन बात कर रहा था, आप सब कुछ कह के मेरी फैमिली, तो मैंने कहा आपकी फैमिली कहां से आ गई? मैंने कहा आपकी फैमिली, ब्रह्मचारी थे, मैंने कहा आपकी फैमिली कहां से आ गई? कह रहा नहीं मतलब, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, यही खतरनाक है। मैंने कहा कंसेप्ट हटाना चाहिए कि मेरी फैमिली, बोले मेरे भाई की फैमिली, वॉट एवर इट इज, आपकी फैमिली कहां से? और सचमुच उनके भाई की फैमिली की बात कर रहे थे, वो उनकी भाई की फैमिली की बात कर रहे थे, उनका मेरी फैमिली, मैंने कहा आपकी फैमिली नहीं है। अगर आप ये कंसेप्ट से भी देखो तब भी आपकी फैमिली नहीं है। मैंने कहा यही चीजें जो है बढ़ जाती है, इसी ये जो चीजें हैं वो फैल जाती हैं, और फिर जो व्यक्ति का उसको ये जो जीवन है वो आकर्षित करने लगता है, क्योंकि हम देहात भक्ति कर रहे होते हैं लेकिन देहात चेतनाओं, देहात बुद्धि से दूर नहीं होते, तो क्या होता है, दोनों चीजें हमें आकर्षित कर रही होती हैं, ये चीजें छूटती नहीं है, वो चीजें आकर्षित कर रही होती हैं, नीचे गिरने का खतरा भी होता है, ऊपर जाने की ललक भी होती है, तो हम दोनों में पिस रहे होते हैं। कई बार ये वाली चेतना खींच लेती है, कई बार ये वाली चेतना खींच लेती है, तो क्या है, भक्ति में हम ऐसा हिलते रहते हैं। प्रभु जी सब ऊपर नीचे, डाउन अप एंड डाउन चलता रहता है, चलता कैसे रहता है? क्योंकि आपकी देहात बुद्धि है इसलिए चलता रहता है। कोई बाहर का गृहस्थ मेरे जैसे व्यक्ति बाहर रहता है वो सोच सकता है, उसके लिए तो है, और कोई व्यक्ति अगर टेम्पल में रहता है तो उसके लिए तो कोई ये सब चीजें बिल्कुल ही नहीं है। तो एक एक जो है वो सिद्धांत होना चाहिए, किसी को पकड़ना है आगे, एक 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 लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या देह छोड़ दूंगा, एकमात्र लक्ष्य, और तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और 100% रक्षा करेंगे। फिर जो मैंने कुछ लिखा था कि जो देहात्म चेतना का व्यक्ति होता है उसके अंदर जो मैंने बताया आपको, एक तो भयभीत रहता है, उसको शोक होता है, उसके अंदर द्वेष होता है, उसके अंदर शत्रुता का भाव होता है, उसके अंदर मित्रता का भाव भी होता है कि कुछ लोग मित्र मित्र हैं, कुछ लोग मेरे शत्रु हैं, और वो हमेशा दुखी होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है वो दो लक्षण उसमें प्रोमिनेंट रूप से प्रकट होता है, वो बता रहे हैं चिंता और विषाद, उसको बड़ी चिंता लगी रहती है, हमेशा चिंता में होता है हमेशा, और विषाद होता है, बहुत शोक करता है, दुख करता है। जैसे प्रभुपाद वहां पर एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन का, उसके जो है वो अर्जुन को चिंता थी और विषाद भी था, तो लेकिन उसने क्या किया, फिर एक एबल व्यक्ति को समर्पण कर दिया। अगर हमारे अंदर है भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक एबल व्यक्ति को समर्पित करना पड़ेगा, और फिर जो है हम इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। फिर जो देहात्म चेतना वाला व्यक्ति होता है उसको प्रोसेस में डाउट होता है, डाउटफुल होता है वो प्रोसेस को लेकर, कि प्रोसेस ठीक भी, आप यकीन मानो, मैं अभी कुछ दिन पहले एक भक्ति कक्षा में विजिट कर रहा था, तो एक माता जी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रभु जी जो आप बता रहे हो अगर मैं ठीक ठीक कर लूँ सब कुछ तो मैं सचमुच भगवान का के धाम चली जाऊंगी ना, मतलब मिल जाएंगे भगवान। मैंने कहा आप कितने टाइम से भक्ति कर रहे हो, व्हाटएवर, मतलब अभी भी व्यक्ति को जो है वो डाउट है, डाउटफुल है इस चीजों को लेकर कि सचमुच हो जाएगा ऐसे, तो उसके अंदर जो है वो डाउटफुल रहता है इन चीजों को लेकर। फिर क्या होता है, जो देहात्म चेतना में व्यक्त है वो मूडी होता है। मूडी व्यक्ति जो है वो कभी भक्ति ठीक से करेगा, कभी छोड़ देगा। चार दिन मंगल आरती बहुत शान से आएगा, दो दिन के चार दिन से जा रहा हूं। भक्ति में होलीडे नहीं होता, मोरल होलीडे कभी नहीं होता। मैंने छह दिन नियमों का ठीक से पालन किया, अब सातवां दिन आज सोने का समय है, आ छह दिन मंगल आरती पूरी हो गई, सब प्रोग्राम पूरे, सातवां दिन आज 9 बजे तक सोऊंगा, नहीं, इसका मतलब वो आप खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड भी भक्ति में लूज करने का समय नहीं देना चाहिए। भक्ति में कोई होलीडे नहीं होता, मॉरल होलीडे कभी नहीं होता। इसलिए इस बात को बहुत दृढ़ता से करना चाहिए, तो उस भक्त के लिए जो है इस ये फॉर्मूले उसके हृदय में छप जाएगा कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे। फिर हमेशा जो है वो ड्यूलिटी द्वंद में रहता है। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है हमेशा द्वंद में रहेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि ना करूं, बताना प्रभु जी, चार बार इस चीज को सोचता है, अब वृंदावन जाऊं कि ना जाऊं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो करना चाहिए काम कि नहीं करना चाहिए, बोलो जी। हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए जो है वो द्वंद में पड़ा रहता है। ये तो मैं छोटी बहुत छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं, अपने बड़े बड़े फैसले भी, घर के बारे में भी, बड़े चीजों के बारे में भी हमेशा द्वंद में रहता है, पता नहीं करना ठीक है क्या कि नहीं, नहीं करूं, ना करूं, हाँ करूं, इस तरह से है। और उसके बाद वो कई बार डिवोशनल सर्विस जो है वो अहंकार की वजह से कर रहा होता है। मैं करके दिखाऊंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा भक्ति कैसे नहीं होती है, मंगल आरती आके दिखाऊंगा। तो कई बार ये दैट इज द आउट ऑफ फॉल्स ईगो। फिर उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति का भाव होता है और दंभी होता है व्यक्ति, जो जिसके अंदर ये देहात बुद्धि होती है वो दंभी होता है। कई बार यह है, दंभी का मतलब है दोगला चरित्र, हम कई बार सामने कुछ और होते हैं पीछे से कुछ और होते हैं। ठीक है इनके सामने तो बता दिया प्रभु जी, ठीक है मान लो मेरे सामने उनकी निंदा कर दी और उसके सामने मेरी निंदा कर दी, वो भी ठीक व्यक्ति नहीं है, आप ठीक समझ रहे हो, मतलब उसके सामने भी हाँ हाँ, मेरे सामने भी हाँ हाँ। इसका मतलब है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहां गए वहीं के हो गए। आप जो कह रहे बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, वो वाले प्रभु वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे प्रभु, आप पता चला दोनों ही मिल गए एक सामने, तो बड़ी अकवर्ड पोजीशन हो जाती है। तो इस तरह से जो है, और फिर कह रहा है पक्षपात की भावना उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये सब बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि भगवान के लिए जो नाराज इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीजें जो है, क्योंकि भगवान के अंदर मेटेरियल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि भगवान देहात्म बुद्धि में नहीं है, इसलिए भगवान के अंदर ये सारे अवगुण एग्जिस्ट ही नहीं करते। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर ये देहात बुद्धि है उसके अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, उसके अंदर ये होगा। और इसके होता क्या है, हम लाइफ आफ्टर लाइफ जो है इसी भौतिक जगत पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जब डिवोशनल सर्विस हम कर रहे हैं ये व्यर्थ चला जाएगा, नहीं, व्यर्थ कभी भी नहीं जाता, ये भगवान का नाम व्यर्थ चलाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नाम जिसने लिया है वो चाहे जैसे भी लिया है, भगवान का ये नाम व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तो होगा क्या, हम बार बार इस मानव शरीर में आएंगे और बार बार फिर इसी तरह से करते रहेंगे और कई जन्मों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका ये है कि अटेंटिव चैंटिंग करें, बहुत ध्यान पूर्वक अगर हम भक्तों जो है जप करेंगे तो हम देहात्म जो चेतना है हमारी, देहात्म बुद्धि है, हम इससे ऊपर उठने लगेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक चैंटिंग करनी है, बहुत ध्यान पूर्वक रीडिंग करना है, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव रीडिंग, फेथफुल हियरिंग जो करना है, भगवान की जो कथा सुनी है, चाहे कोई भी कर रहा है भक्ता, अगर परंपरा के वो फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से कर रहा है तो बहुत ध्यानपूर्वक फेथफुली सुनना चाहिए जो उसके बारे में, कि जो है बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए उस बात को, फेथफुली हियरिंग। फिर इस प्रोसेस में पूरा फेथ होना चाहिए कि इस जो प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ या जिस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रही हूँ, निश्चित रूप से मैं एक दिन भगवान के धाम जाऊंगी और भगवान की कृपा मिलेगी मुझे, निश्चित रूप से। एक गाना गाते हैं ना बाहर के लोग, अगर राम का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो अगर सचमुच भगवान दयानिधि हैं, सचमुच भगवान अगर करुणा सिंधु हैं, तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन करुणा करेंगे, आपके ऊपर भी करुणा आएगी उनको। इसीलिए इस प्रोसेस में पूरा फेथ होना चाहिए और कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, रक्षिष्यति इति विश्वास हो, इस भाव को हमेशा बनाए रखिए। चाहे आप जहां भी होते हैं निश्चित रूप से भगवान आपकी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से डाउटलेसली रक्षा करेंगे, और सबकी रक्षा करते हैं। ये बात मत सोचिएगा कि जो बड़े भक्त हैं, जो सन्यासी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं उसकी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं आपकी भी करेंगे, आपकी भी करेंगे भगवान, निश्चित रूप से करेंगे। भगवान पर्सनली रक्षा करते हैं, पर्सनली भगवान रक्षा करते हैं, और ये बात जो है वो कई जगह उन्होंने इसको साबित भी किया है। जैसे गजेंद्र का केस लीजिए, गजेंद्र के केस में क्या वो भगवान की भक्ति कर रहा था? गजेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा था? वो तो लड़ाई कर रहा था ग्राह से, और कितने हजार सालों तक उसने युद्ध किया। जब उसको अपने पावर पर फेथ नहीं रहा, उसको लगा कि मैं अब जीतूंगा नहीं, तब उसने भगवान की शरण ली। तब भी हम भगवान की शरण, हमारी स्थिति तो ये है कि हम तब भी भगवान की शरण नहीं देते। गज में तो ये स्थिति थी कम से कम कि उसको लगा कि मुझे भगवान की शरण अब तो ले लेनी चाहिए। क्यों ये हुआ बताइए? क्योंकि वो जो गजेंद्र था वो पिछले जन्म में जो है वो गंधर्व था ये, और उसने भगवान की भक्ति बहुत बहुत दृढ़ता से करी थी। तो वो जो बहुत दृढ़ता से जब उसने भक्ति करी थी तो वो बात अब उसको याद आ गई। पानी का जीव होने के कारण जो मगर है वो शक्तिशाली था, और जब उसको लगा कि खींचता ही जा रहा था पानी में, तब उसको लगा कि अब नहीं बचूंगा मैं, तो फिर मैं भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारा उस समय में भगवान को पुकारा, देखिए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूरदास बड़ा अच्छा पद लिखते हैं, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद मेरा शरण में रखो, अब तो मैं खत्म हो रहा हूं। इस तरह से जो है उन्होंने भगवान को पुकारा, और ये जो करुणा थी उसकी, जो पुकार थी वो कहां जा रही थी? भौतिक जगत को से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रही थी। आप समझिए, भौतिक जगत से निकल के उसकी करुण पुकार जो कहां प्रवेश कर रही थी? आध्यात्मिक जगत में, और भगवान इस चीज को देख रहे थे। भगवान जो है उस जितने भी द्वारकावासी थे उनको आश्चर्य लगाए कि किसकी करुण पुकार है, कौन रो रहा है, और किसकी करुण आवाज हो रही है। द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पे सिधारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ये शब्द वहां शोर मचने लग गया पूरे द्वारका में, और भगवान स्वयं आए। स्वयं भी क्या आए आप देख लीजिए, गरुड़ पे आ रहे थे वो, और गरुड़ की कितनी गति है आप सोच सकते हो कि हवा से, ये माइंड से 1,00,000 गुना ज्यादा गति है गरुड़ की, इतना स्पीड में चलता है गरुड़। तो भगवान को तब भी विश्वास नहीं हुआ कि ये गरुड़ मुझे पहुंचा देगा गजेंद्र तक समय पर, तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ से कूद पड़े और उसको बचा लिया। तो कहने का मतलब यह था कि भगवान पर्सनली रक्षा करेंगे, इस बात हमारे अंदर अंदर होना चाहिए। उसने इस जन्म में भक्ति नहीं करी थी गजेंद्र, मैं कहना यह चाहता था, उसने इस जन्म में भक्ति नहीं करी थी, लेकिन भगवान उसकी भक्ति को भूले नहीं थे। उसको साफ बस हाथी बनना पड़ा था, न भगवान भूले न गजेंद्र भूला, लास्ट समय भी उसने भगवान को याद किया। इसलिए हमारी जो है दृढ़ता होनी चाहिए इस भक्ति में, और वैष्णव ऑफेंसेज को अवॉइड करिए। एक जो नेक्स्ट उसमें है कि हम वैष्णव अपराध से बचे रहने का प्रयास कर सकते हैं, और इस डिवोशनल सर्विस को किसी एबल गाइडेंस के अंदर करिए, किसी न किसी को अपना नाथ बनाकर करिए, किसी न किसी भक्त के अंदर में हमें जो है ये अपनी डिवोशनल सर्विस चलानी चाहिए। डिवोशनल सर्विस जो भक्ति है वो फ्रीलांस नहीं होती है, फ्रीलांस जर्नलिज्म नहीं है, जैसे मर्जी भक्ति कर लो, माला ही तो करनी है प्रभु जी, बता दिया गुरु महाराज ने माला करनी है, चार नियम करना है, कर रहा हूं, किसी की जरूरत नहीं है। ये कई जन्मों वाली भक्ति है, किसी एबल व्यक्ति के अंदर में गाइडेंस में भक्ति करनी पड़ेगी, हर बात को पूछना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस देहात बुद्धि से जो है बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है किसी जीवात्मा के लिए कि वो देहात बुद्धि से बाहर निकल जाए। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद की।